विश्व दर्पण। श्रोताओं, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे सऊदी अरब में तेजी से जारी घटनाक्रम की। सऊदी अरब में जब से शाह सलमान को सत्ता मिली है और उनकी आड़ में सारे अधिकार उनके पुत्र और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मिले हैं, तब से हर स्तर पर बहुत तेज गति से घटनाएं हो रही हैं। मोहम्मद बिन सलमान देश के भीतर और क्षेत्रीय स्तर पर लगातार बड़ी उलटफेर करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने कभी तो ईरान के हस्तक्षेप और विस्तारवाद की बात करके यमन पर युद्ध थोप दिया, कभी देश के भीतर एक एक करके सभी महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद बिन सलमान ने हालिया दिनों शाही फरमान से एक एंटी करप्शन कमेटी बनाई, जिसके तहत वो अध्यक्ष बन गए और फिर बड़े पैमाने पर राजकुमारों और मंत्रियों की गिरफ्तारियां शुरू हुई, जो अब तक जारी हैं। देश के भीतर इस बड़ी उलटफेर के साथ ही मोहम्मद बिन सलमान ने क्षेत्रीय स्तर पर भी बड़े भयानक कदम उठाए हैं। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण घटना लिबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी का त्यागपत्र है। गत 4 नवंबर को साद हरीरी को बैरूत से अचानक रियाज बुलाया गया, जिसके तत्काल बाद साद हरीरी ने त्यागपत्र दे दिया। साद हरीरी ने अपने त्यागपत्र में कहा कि देश के भीतर उस प्रकार की परिस्थितियां हैं जिस प्रकार की परिस्थितियां पूर्व प्रधानमंत्री और उनके पिता रफीक हरीरी की हत्या से पहले थीं। साद हरीरी ने अपने त्यागपत्र में हिजबुल्ला आंदोलन और ईरान पर लेबनान तथा क्षेत्र के अन्य देशों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया।
ولأنني لا أرضى أن أخذل اللبنانيين أو أقبل بما يخالف تلك المبادئ فإني أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية. أشير وبكل صراحة ودون مواربة إلى إيران التي ما تحل في مكان إلا وتزرع فيه الفتن والدمار والخراب।
हरीरी का त्याग पत्र सबके लिए बहुत अनपेक्षित था, क्योंकि साद हरीरी बड़े सुचारू रूप से देश की सरकार चला रहे थे और देश के राजनीतिक दलों की आपसी सूझबूझ और समन्वय से देश का संचालन किया जा रहा था। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने भी कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से साद हरीरी के लिए देश में किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। यहीं से एक नई बहस छिड़ गई। बहस यह है कि सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आदेश पर लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी को नजरबंद कर दिया गया है। साद हरीरी ने त्यागपत्र भी सऊदी अरब के दबाव में दिया और उन्होंने अपनी पार्टी के टीवी चैनल अल मुस्तकबल के बजाय सऊदी अरब के अल अरबिया टीवी चैनल पर त्यागपत्र की जो स्क्रिप्ट पढ़ी वो भी सऊदी अधिकारियों ने लिखकर उन्हें दी थी। यही कारण है कि लेबनान में इस त्यागपत्र के बाद व्यापक रूप से प्रतिक्रिया सामने आई। हिजबुल्ला के प्रमुख सैयद हसन नसरुल्ला ने अपने महत्वपूर्ण भाषण में कहा कि हम इस त्यागपत्र को स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम साद हरीरी के साथ सऊदी अरब का जो बर्ताव है उसकी निंदा करते हैं।
نحن ندين هذا التدخل السعودي السافر في الشأن الداخلي اللبناني ما بحق لهم ما بجوز لهم ما بيسوى غير لائق وندين خصوصا هذا التصرف المهين مع رئيس سعد الحريري।
सैयद हसन नसरुल्ला ने इस भाषण में कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब इस समय हिजबुल्लाह के विरुद्ध युद्ध छेड़ना चाहता है और जिस तरह उसने सीरिया को तबाह किया और यमन को तबाह किया, उसी तरह अब लेबनान को तबाह करने की योजना बना रहा है।
طيب ما هي النتيجة في سوريا؟ خربوها دمروها من قتل قتل من جرح جرح البيوت التي دمرت دمرت هؤلاء الأمراء الذين كانوا يديرون المعركة من عمان أين هم اليوم؟ هذا العراق هذا اليمن هذه المنطقة।
सैयद हसन नसरुल्ला ने कहा कि सऊदी अरब इस कोशिश में है कि इसराइल के माध्यम से लेबनान के विरुद्ध युद्ध शुरू करवाए, लेकिन ये तय है कि इसराइल खुद अपने हितों के अनुसार ही कोई कदम उठाएगा। सैयद हसन नसरुल्ला ने कहा कि जब 2006 में इसराइल ने लेबनान पर युद्ध थोपा और युद्ध में उसे विफलता मिली और लड़ाई बंद होने वाली थी, तो सऊदी अरब ने इसराइल पर बहुत दबाव डाला कि वो हिजबुल्ला को खत्म करने तक लड़ाई जारी रखे।
كانت اتصالات سعودية تطالبه بمواصلة الحرب حتى القضاء على المقاومة في لبنان।
लेबनान के मामले में इसराइल से सऊदी अरब के समन्वय का अंदाजा इससे होता है कि इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने साद हरीरी के त्यागपत्र का स्वागत किया। सवाल यह है कि सऊदी अरब लेबनान पर युद्ध क्यों थोपना चाहता है? तो इसकी असली वजह यह है कि लेबनान में सऊदी अरब ने अपनी पैठ बनाने के लिए लंबे समय से प्रयास किया और ये कोशिश की कि इस देश की विदेश नीति, यहाँ तक कि आंतरिक मामले भी रियाद सरकार की इच्छा के अनुसार चलें, मगर सऊदी अरब को इसमें सफलता नहीं मिली। सऊदी अरब ने साद हरीरी पर दबाव डाला कि वो हिजबुल्लाह के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दें, लेकिन साद हरीरी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो नतीजे में रियाद सरकार ने लेबनान के खिलाफ साजिश रची और साद हरीरी को त्यागपत्र देने पर मजबूर किया। यहाँ ये बता देना भी जरूरी है कि साद हरीरी के पास सऊदी अरब की भी नागरिकता है और उनकी कुछ कंपनियां सऊदी अरब में काम करती हैं और यही साद हरीरी की कमजोरी है जिसका फायदा सऊदी सरकार उठा रही है। बहरहाल अब लेबनान में चारों तरफ ये आवाज उठ रही है कि साद हरीरी को वापस आने दिया जाए। यहां तक कि साद हरीरी की अलमुस्तकबल पार्टी ने भी ये मांग की है, जो सऊदी अरब की घटक समझी जाती है। लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल ऑन ने कहा कि सऊदी अरब उन रुकावटों के बारे में स्पष्टीकरण दे जिनके चलते साद हरीरी लेबनान वापस नहीं आ पा रहे हैं। बैरूत में रूस के राजदूत ने कहा कि यदि साद हरीरी की वापसी नहीं होती तो उनका देश इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में उठाने के लिए तैयार है। अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने इस मामले में महत्वपूर्ण बयान दिया। टिलरसन ने विमान पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लेबनान को प्रॉक्सी वॉर का मैदान नहीं बनाया जाना चाहिए। टिलरसन ने सऊदी अरब को भी संदेश दिया और इसराइल को भी चेतावनी दी कि युद्ध की स्थिति में अमेरिका खुद को दूर रखेगा। बैरूत स्थित वरिष्ठ अमरीकी राजनीतिक टीकाकार निकोलस नो का मानना है कि सऊदी अरब के कारण लेबनान में चिंता फैली हुई है और लोग सऊदी अरब की आलोचना कर रहे हैं।
Well, I'm here in Beirut, Lebanon, and I think it's probably best to have Lebanese answer how they're viewing it. I can speak at least on part of American and European officials that I've spoken to here and elsewhere and back home in the U.S. There is a great degree of concern that the Crown Prince, together with key actors, especially in my own government, in the American government, have unleashed a series of forces that go way beyond what can be kind of planned out like a nice kind of, you know, chess game or something like that. There are a series of contingencies and huge dangerous forces that are now shaping and reshaping interests and actions that may or may not be taken by different actors. That's the real danger here, in that we have a very complicated security architecture of the Middle East that has been under tremendous strain and threat. Indeed, for many of us, we see it as basically breaking and broken. Right now, we stand on the edge of really possibly having a whole new series of confrontations. I mean, for God's sakes, Saudi Arabia has more or less declared war on Lebanon and Hezbollah.
अरब जगत के वरिष्ठ टीकाकार अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि सऊदी अरब लेबनान के विरुद्ध युद्ध छेड़ना चाहता है, जो पूरी तरह अतार्किक है। लेबनान आर्थिक दृष्टि से कमजोर देश है। इस देश में 15 साल तक गृह युद्ध चला है, जिसके बाद अब ये देश धीरे धीरे पटरी पर आने की कोशिश कर रहा है। इस देश ने सीरियाई और फिलिस्तीनी शरणार्थियों को जगह दी है, उसके खिलाफ युद्ध छेड़ना पाप है।
بدهم حرب بيعمل حرب في لبنان اي والله حرام حرام هاللبنان ديونه 80 مليار دولار اقتصادهم هسه مضعضع عنده اكثر من 2 مليون لاجئ سوري عنده 400 لاجئ فلسطيني عنده يعني نازحين من كل مكان طيب ليش بدنا ندمر هالبلد।
ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली शमखानी का मानना है कि इस षड्यंत्र में अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब शामिल है। दाइश के रूप में रची जाने वाली साजिश नाकाम बना दी गई। इसके बाद कुर्दिस्तान के इराक से अलग होने का मुद्दा उठाया गया, लेकिन उसे भी हल कर लिया गया। तो अब लेबनान में संकट पैदा करने के लिए साद हरीरी से त्याग पत्र दिलवाया गया है। भारत के वरिष्ठ टीकाकार प्रोफेसर मोहम्मद अरशद का मानना है कि साद हरीरी का त्यागपत्र बड़ी असाधारण घटना है।
ये बिल्कुल गैर मामूली वाकया है। इसमें कोई शुबा नहीं कि साद हरीरी के सऊदी अरब से तजारती और सियासी ताल्लुकात थे और साद हरीरी बड़ी हद तक वही काम करते थे जो सऊदी अरब चाहता था, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि साद हरीरी सऊदी अरब के लिए शायद उस तरह काम नहीं कर पा रहे थे जैसा कि सऊदी अरब की मर्जी या मंशा थी। इसलिए सऊदी अरब ने उनको कॉल किया, वो आए वहां बैठ करके वो इस्तीफा दे रहे हैं, बल्कि इस्तीफा पढ़ रहे हैं जो कि दूसरों ने डिक्टेट करवाया है सऊदी अरब की। जाहिर सी बात है कि वजारत खारजा ने या वहां के हुकाम ने वो उनको डिक्टेट करवाया है। तो इसलिए ये बिल्कुल गैर मामूली वाकया है और माजी करीब की तारीख में ऐसी कोई चीज नहीं मिलती कि इस तरह किसी को अगवा करके हम कह सकते हैं या नजरबंद करके आप उसको जो है इस्तीफा देने पे मजबूर करें। और ये सरासर लेबनान के दाखिली उमूर में मुदाखलत है। और जैसा कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्ला साहब ने कहा है, वो बिल्कुल सही कहा है कि ये लेबनानियों के लिए काबिल कबूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले सीरिया में फिर यमन में जिस तरह सऊदी अरब ने मुदाखलत की है और उसका जो है नौजवान जो है शहजादा वो जिस तरह के एडवेंचर्स से एक तरह से अमेरिका को खुश करना चाहता है और जिस तरह वो इसराइल की मदद करना चाहता है, वो ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे सऊदी अरब हिजबुल्लाह को या जो है उन मुसलमानों को जो कि सऊदी के लिए या सऊदी पॉलिसियों के लिए कभी आगे चल करके खतरा बन सकते हैं, उनको जो है नीचा दिखाया जाए, उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाए। और शायद इसीलिए ये सब कुछ खेल खेला गया है कि लेबनान में अदम इस्तेहकाम पैदा हो और वहाँ पे आपसी जो है खलफशार हो और उसको बहाना बना करके इसराइल को मौका दिया जाए कि वो लेबनान पे हमला कर दे और लेबनान कमज़ोर हो जाए। क्योंकि लेबनान का कमज़ोर होना यमन और सीरिया दोनों में जो है सऊदी मुदाखलत को एक तरह से हिमायत देगा और इसराइल उसके मुकाबले में कमज़ोर होगा। यही वजह है कि इसराइल की जो अभी लीक एक आई है उसमें ये बात कही गई है इसराइली वजारत खारजा की तरफ से कि सऊदी मौकफ का हर तरफ जो है उसको सपोर्ट किया जाए और जहाँ जहाँ भी इसराइली सफारतखाने हैं वो इस मौकफ की ताईद में लोगों को हमवार करें, लॉबिंग करें उनके लिए। तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत ही खतरनाक फैसला है जो सऊदी अरब ने किया है और ये लेबनान के दाखिली मामलात में बराह रास्त सऊदी अरब की मुदाखलत है।
समस्या यह है कि सऊदी अरब की सरकार बार बार गलती कर रही है और हर मोर्चे पर उसे विफलता का सामना है। सीरिया में बशार असद की सरकार को गिराने के लिए सऊदी अरब ने अन्य घटकों के साथ मिलकर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। इराक में दाइश के माध्यम से संकट उत्पन्न करने की भरपूर कोशिश की, वो कोशिश भी अब नाकाम हो चुकी है। यमन पर युद्ध थोपा, लेकिन सऊदी अरब का कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, बल्कि यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों ने अपनी शक्ति बढ़ा ली है और हाल ही में रियाज पर बैलिस्टिक मिसाइल मारकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर दिया। इन परिस्थितियों में सऊदी अरब अपनी गलतियों से पाठ लेकर उनमें सुधार करने के बजाय नई गलतियां कर रहा है। वैसे अनुभवहीन और सत्ता के लोभी मोहम्मद बिन सलमान से इससे अलग हटकर कोई अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। We'll be right back.